Om Shanti. 2 May 1982. अपनी जीवन कहानी को सदा उन्नति को उन्नति की ओर बढ़ाने वाले सर्व विशेषताओं से संपन्न सर्व प्राप्ति स्वरूप ऐसा श्रेष्ठ बनाओ। अभी अभी ऊपर, अभी अभी नीचे व कुछ समय ऊपर कुछ समय नीचे, ऐसे उतरते चढ़ने के खेल में सदा का अधिकार छोड़ नहीं देना। आज बाप दादा सभी की जीवन कहानी देख रहे थे तो सदा चढ़ती कला वाले कितने होंगे और कौन होंगे। अपने को तो जान सकते हो ना कि मैं किस लिस्ट में हूं। उतरने की परिस्थितियां, परीक्षाएं तो सबके सामने आती है। बिना परीक्षा के तो विनोद भाई क्या बिना परीक्षा के तो कोई भी पास नहीं हो सकता, लेकिन परीक्षा में साक्षी और साथीपन की स्मृति स्वरूप द्वारा फुल पास होना व पास होना व मजबूरी से पास होना, इसमें अंतर हो जाता है। बड़ी परीक्षा को छोटा समझना व छोटी सी बात को बड़ा समझना, इसमें अंतर हो जाता है। कोई छोटी सी बात को ज्यादा सिमिरन वर्णन और वातावरण में फैलाए, इससे भी छोटे को बड़ा कर देते हैं। ये अभी भी पड़ी आई है मुतली कुछ दिनों पहले। और कोई फिर बड़ी बात को भी चेक किया और साथ साथ चेंज किया और सदा के लिए कमजोर बात को फुल स्टॉप लगा देते हैं। फुल स्टॉप लगाना अर्थात फिर से भविष्य के लिए फुल स्टॉक जमा करना, आगे के लिए फुल पास के अधिकारी बनना। तो ऐसे बहुत काल की चढ़ती कला के तकदीरवान बन जाते हैं। तो समझा जीवन कहानी की क्या विशेषता क्या रखनी चाहिए। इससे सदा आपकी विशेष जीवन कहानी हो जाएगी। जैसे कोई की जीवन कहानी विशेष प्रेरणा दिलाती है, उत्साह बढ़ाती है, हिम्मत बढ़ाती है, जीवन के रास्ते को स्पष्ट अनुभव कराती है, ऐसे आप हर विशेष आत्मा की जीवन कहानी अर्थात जीवन का हर कर्म अनेक आत्माओं को ऐसा अनुभव करावे। सबके मुख से मन से यही आवाज निकले कि क्या आवाज निकले जब निमित्त आत्मा यह कर सकती है तो हम भी करें। निमित्त आत्माओं के लिए कल क्या कहा था बाबा ने, अव्यक्त मुरली संडे की, जो निमित्त आत्माएं हैं उनके लिए क्या, कमलेश भाई परिवार की तरफ से और बाप दादा की तरफ से क्या हो जाता है निमित्त आत्माओं के लिए। निमित्त आत्माओं के लिए प्रकाश भाई बाबा ने कल क्या कहा था, जो निमित्त आत्मा है उनके लिए क्या, मुरली वरदान नहीं मुरली, पर शायद उसमें पब्लिश नहीं हुआ, मतलब प्रिंट नहीं हुआ है, ओरिजिनल में है तो नहीं। गायत्री बहन से मुलाकात है उसी में थोड़ा सा आगे, उसमें नहीं है शायद। बाप दादा और परिवार जो भी बच्चे निमित्त बने हैं उन पर शुभ स्नेह की वर्षा करते हैं है? है तो वही तो पूछा फिर जो निमित्त बनते हैं उनके लिए क्या करते हैं, शुभ स्नेह के पुष्पों की वर्षा बाप दादा करते हैं। और पिछले संडे कौन सी वर्षा की थी, 15 फरवरी, 14 को कॉन्फ्रेंस पूरी हुई, 15 को कौन सी वर्षा की बाबा ने। जो भी आत्माएं निमित्त बने हैं गोल्डन फ्लावर्स सुनहरे पुष्प की वर्षा बाप दादा करते हैं, है ना। जब निमित्त आत्मा यह कर सकती है तो हम भी करें, हम भी आगे बढ़ेंगे, हम भी सभी को आगे बढ़ाएंगे। ऐसी प्रेरणा योग्य विशेष जीवन कहानी सदा बनाओ। समझा क्या करना है। 2 मई 1982 अपनी जीवन कहानी को सदा उन्नति की ओर आगे बढ़ने वाले सर्व विशेषताओं से संपन्न सर्व प्राप्ति स्वरूप ऐसा श्रेष्ठ बनाओ। जीवन कहानी क्या करो, सर्व विशेषता है उसमें भर दो, और क्या करो उसमें सर्व प्राप्ति संपन्न उसको बना दो। कल भी कहा था, बाप के बालक सो मालिक बच्चे हो, घर का बच्चा घर का मालिक, ऐसे खजाने जिसमें कोई भी प्राप्ति कोई भी अप्राप्ति नहीं। अगर ऐसे ही उमंग उत्साह में नहीं रहेंगे तो कौन रहेगा? अभी अभी ऊपर अभी अभी नीचे, व कुछ समय ऊपर कुछ समय नीचे, ऐसे उतरते चढ़ने के खेल में सदा का अधिकार छोड़ नहीं देना। सदा का अधिकार इस खेल में नहीं छोड़ना है। किस खेल में? ऊपर नीचे। स्वराज्य अधिकारी सो विश्व राज्य अधिकारी, यूके रूप से बात की। आज बाप दादा सभी की जीवन कहानी देख रहे थे, तो सदा चढ़ती कला वाले कितने होंगे और कौन होंगे? अपने को तो जान सकते हो ना कि मैं किस लिस्ट में हूँ, किस लिस्ट में है कलाएं। किसी एक क्लास में हमने चर्चा की थी ब्राह्मण जीवन की 7 कलाएं, कौन कौन सी? एक तो ठहरती कला, जा रुके, ठीक है। एक है चलती कला, चलना चालू किया। दो, फिर उसके बाद में दौड़ती कला, फिर उसके बाद में चढ़ती कला, फिर उसके बाद में उड़ती कला, ये हो गया। फिर उसके बाद में ये जो चढ़ती है उसमें गिरती नहीं, उतरती, गिरती थोड़ा शिष्टाचार से परिपूर्ण शब्द नहीं है तो कभी कभी उतरती कला, एक है रुकती, एक तो ठहरती कला, एक दूसरा चलती कला, तीसरा दौड़ती कला, चौथा चढ़ती कला, पांचवा उड़ती कला, छठवा उतरती कला, और सातवा चढ़ती और उतरती दोनों साथ साथ, कभी चढ़ती कभी उतरती, कभी चढ़ती कभी उतरती, कभी चढ़ती कभी, अभी अभी ऊपर अभी अभी नीचे। आज बहुत अच्छा पावरफुल अमृत वेला, दूसरे दिन सीधा 8:30 4:30 बजे नींद खुली। तो ब्राह्मण जीवन के की कला है। तो बाबा पूछ रहे उतरने की परिस्थिति आप, तो बाप दादा सभी की जीवन कहानी देख रहे थे, तो सदा चढ़ती कला वाले कितने होंगे और कौन होंगे? अपने को तो जान सकते हो ना कि मैं किस लिस्ट में हूं, ये दूसरा और कोई नहीं जान सकता, केवल हम और केवल हम ही जान सकते हैं। उतरने की परिस्थिति या परीक्षा है तो सबके सामने आती है, बिना परीक्षा के तो कोई भी पास हो नहीं सकता। इसके लिए आशीष भाई, महावीर कौन है? आज का वरदान, परीक्षा में साक्षी और साथीपन की स्मृति स्वरूप द्वारा फुल पास होना व पास होना व मजबूरी से पास होना, इसमें अंतर हो जाता है। बड़ी परीक्षा को छोटा समझना और छोटी बात को बड़ा समझना, इसमें अंतर हो जाता है। तो महावीर अर्थात परिस्थिति आएगी, परीक्षाएं आएगी, परंतु सदा कभी भी हार न खाने वाले। मंजूबेन, महावीर अर्थात कभी ना हार खाने वाले, और महावीर अर्थात बाप की याद में नहीं। आज की मुरली का वरदान बताओ, सदा सदा विजयी। दुख कभी, दुख की लहर कभी स्वप्न में भी नहीं आ सकती है। स्वप्न में आता वही है जो दिन भर होता है। दिन भर में यदि थोड़ा थोड़ा दुख है, थोड़ा थोड़ा गम है, थोड़ी थोड़ी उदासी है, थोड़ा थोड़ा फ्रस्ट्रेशन है, थोड़ी थोड़ी रिक्तता है, एम्प्टीनेस है, सब कुछ ठीक है, फिर भी खालीपन सा महसूस होते रहता है, क्या करूं? अगर एक घंटा ऐसे ही दिया जाए तो वो ऐसे ही वेस्ट हो जाता है। ऐसा अचानक से एक घंटा खाली मिल गया, अचानक से छुट्टी हो गई ड्यूटी से, सेवा से, और जो पहले नहीं था वो रोज उसमें हम कुछ करते हैं, पर अचानक खाली मिल गया तो उस खाली टाइम में क्या करना वही समझ में नहीं आता है। अब क्या करूं? वहां अचानक से रिक्तता, तो वहां पर दुख प्रवेश कर जाता है। पुरानी स्मृतियां जागृत हो सकती है दुख की। बड़ी परीक्षा को छोटा समझना व छोटी बात को बड़ा समझना, इसमें अंतर हो जाता है। कोई छोटी छोटी बात को ज्यादा सिमरन वर्णन और वातावरण में फैलाए। इसमें भी छोटे को बड़ा कर देते हो। क्या क्या करते हैं? तीन चीजें करते हैं। पहले तो याद करते हैं उसको, जो बात छोटी सी थी उसको सोच सोच के उसकी साइज बड़ी कर देते हैं। फिर उसका सेकंड स्टेप, क्योंकि साइज बात बड़ी हो गई, अभी छोटे से इसमें कैसे रहेगी, तो उसको आउटलेट चाहिए, बाहर जाने का कोई निकास का मार्ग चाहिए। तो निकास का मार्ग मुख के द्वारा, तो मुख से निकलता है बाहर। फिर वर्णन उसका कि हमारे साथ ये हुआ, तुम्हारे साथ क्या क्या हुआ, तुम्हारे साथ भी हुआ, मेरे साथ तो उससे भी बड़ा हुआ। फिर दोनों वर्णन करते हैं, और वर्णन करने के बाद थर्ड स्टेप, थर्ड कौन सी, वातावरण में फैलाते हैं एक दूसरों की बातें। फिर जो फैला रहा है, जो सोच रहा है, वर्णन कर रहा है और बोल रहा है, उसमें अभी तीनों ही इंद्रिय, सारी इंद्रिय, जितनी ज्यादा इंद्रिय इन्वॉल्व होती है किसी चीज में, उतना ज्यादा स्मृति पटल पर वो बात पक्की बैठती है। अगर केवल कोई बात सोच ली और बोली नहीं गई तो भूल भी जाए। एक अंग्रेजी ऑथर ने लिखा है, ऑलवेज रिपेंट फॉर व्हाट आई हैव स्पोकन, नेवर फॉर व्हाट आई थॉट। मैं हमेशा उसके लिए ही पश्चाताप किया हूं जो मैंने बोल दिया, जो बात मेरे मन में आई पर मैंने बोली नहीं, उसके लिए मैंने पश्चाताप नहीं किया, क्योंकि वो आई और चली गई, पर जो मैंने बोल दी उसके लिए मैंने पश्चाताप किया है। तो बातों का क्या करते हैं, क्या करते हैं, सिमिरन, सिमिरन अर्थात सिमिरन, एक है याद, एक है सिमिरन, सिमिरन, अंदर ही अंदर चिंतन करना, अंदर ही अंदर सिमिरन अर्थात जैसे भक्त सिमिरन करते हैं ना, जाप, सिमिरन का ज्यादा संबंध जाप से है, सिमिरन करने रहता निरंतर, उसको रिपीट रिपीट करते रहना, रिपीट करना, बार बार रिपीट करना उसको, बार बार उसको दिल से याद करना, हृदय की गहराई से उसको याद करना। तो याद करना, फिर उसका वर्णन करना, और जो बात निरंतर हमारे मुख में गूंज रही, जैसे कोई व्यक्ति एक किताब पढ़ रहा है और वही किताब में इतना डूबा हुआ है, तो नेचुरली वो जब बोलेगा तो वही किताब का कुछ ना कुछ बोलेगा कि ये किताब में ऐसा है, क्योंकि वही किताब घूम रही है। वर्णन, और फिर तीसरा वातावरण में फैलाना। और कोई फिर बड़ी बात को भी चेक किया और साथ साथ चेंज किया, और सदा के लिए कमजोर बात को फुल स्टॉप लगा दो। कितनी भी बड़ी बात हो उसका वर्णन करने की आवश्यकता नहीं, शायद वो अंदर ही अंदर खत्म हो जाए। हाँ, वर्णन अगर करना भी है तो वो उस व्यक्ति के सामने जिससे कुछ उसका हल मिले, उन लोगों के साथ नहीं जिनसे कुछ नहीं मिलने वाला, जो खुद ही अपनी समस्याओं में डूबे हैं, वो हमारी समस्याओं को क्या हल करेंगे। फुल स्टॉप लगाना अर्थात फिर से भविष्य के लिए फुल स्टॉप जमा करना, आगे के लिए फुल पास के अधिकारी बनना। तो ऐसे बहुत काल की चढ़ती कला के तकदीरवान बन जाते हो। तो समझा जीवन कहानी की विशेषता क्या रखनी है, इसमें सदा अपनी जीवन विशेष जीवन कहानी हो जाएगी। जैसे कोई की जीवन कहानी विशेष प्रेरणा दिलाती है, उत्साह बढ़ाती है, हिम्मत बढ़ाती है। उत्साह, प्रेरणा, हिम्मत, इंस्पिरेशन, एंथुजियाज्म एंड करेज, ये तीन चीजें बहुतों की जीवन कहानी से मिलती है। जीवन के रास्ते को स्पष्ट अनुभव कराती है, जीवन के रास्ते को स्पष्ट अनुभव कराती है। इसलिए दो शक्तियां कल बाबा ने बताई थी, मीडिया, कौन सी दो शक्तियां, एक मुख और कलम, पावर ऑफ पेन और पावर ऑफ स्पीच, ज्यादा शक्तिशाली कौन सी है, स्पीच, स्पीच तो आज जो बोला कल भूल जाएंगे, जो पढ़ते नहीं वो सुनते भी है वो कम है, जो बहुत पहले 200 साल पहले जिसने कुछ भाषण दिया था वो भाषण तो भूल गया, पर हाँ किसी ने अगर वो भाषण लिख लिया तो वो लिखा हुआ जो है वो ज्यादा पावरफुल होता है। एक्चुअली पेन इज माइटियर देन स्वॉर्ड, पेन जो होती है ना वो सबको हिला देती है। एक पत्रकार की कलम जो होती है समाज में क्रांति ला सकती है, समाज की क्रांति का आधार बन जाती है पत्रकार की कलम, क्योंकि वो जो कुछ लिखता है उससे समाज में कुछ कुछ हो सकता है, पूरी विचारधारा बदल सकता है एक लेखक, इतनी उसके कलम में शक्ति होती है। अ ड्रॉप ऑफ इंक मेक मिलियंस थिंक, एक ड्रॉप इंक की मिलियंस को, लाखों करोड़ों को सोचने में मजबूर कर देती है, इतनी पावर पेन में है। तो ऐसे आप पेन तो बांटने से कुछ नहीं होगा पेन कलमधारियों को बाबा ने कौन सी सौगात दी थी पिछले संडे आशीष भाई? कमल क्या दिया था? कमल आसन पर बैठ के लिखोगे तो क्या होगा? एक तो बाप के प्यारे, एक तो दुनिया से न्यारे, तमो प्रधान वातावरण से न्यारे रहेंगे, परमपिता परमात्मा के प्यारे रहेंगे। इसके लिए कुछ भी लिखना है तो किसमें बैठ के लिखना है? कमल आसन। कहाँ से मिलेगा वो? निखिलेश भाई के पास कमल आसन पे बैठकर ही फिर लिखना। वो लिखना चाहे SMS हो, WhatsApp हो, कुछ भी हो। वो बैठेंगे तो पता चलेगा ये मैसेज भेजू या नहीं भेजू। भेजने बैठने से पहले लगेगा भेज दू, बैठने के बाद पता चलेगा कुछ फायदा नहीं है ये भेज के, क्यों भेजना है तो हिम्मत, प्रेरणा, उत्साह। उत्साह अर्थात खुशी, उत्साह अर्थात एंथुजियाज्म। एक है उमंग, एक है उत्साह, एक है उत्सव। उमंग, उत्साह, उत्सव। अंदर से जो चालू होता है उमंग, बाहर कर्मों में जो परिलक्षित होता है वो उत्साह। और ऐसा उत्साह जब विशेष दिन किसी दिन मनाया जाता है तो उसे फेस्टिवल, पर्व, उत्सव कहा जाता है भारत में या विश्व भर में। हिम्मत बढ़ाती है, रास्ते की, जीवन के रास्ते को स्पष्ट अनुभव कराती है। ऐसे आप हर विशेष आत्मा की जीवन कहानी अर्थात जीवन का हर कर्म अनेक आत्माओं को ऐसा अनुभव कराए, सबके मुख से, मन से यही आवाज निकले कि जब निमित्त आत्मा यह कर सकती है तो हम भी करें। इसके लिए बाबा ने उनके ऊपर कल क्या कर दिया? बाप दादा और ब्राह्मण परिवार ऐसे निमित्त बने हुए आत्माओं के ऊपर शुभ स्नेह के पुष्पों की वर्षा करते हैं। हम भी आगे बढ़ेंगे, उनको भी लगे क्या, हम भी आगे बढ़ेंगे, हम भी सभी को आगे बढ़ाएंगे। ऐसी प्रेरणा योग्य विशेष जीवन कहानी सदा बनाओ। समझा क्या करना है? एक बहुत प्रसिद्ध लामा ने, इसके पहले कभी सुनाई थी कहीं और, अपनी एक जीवन कहानी लिखी है एक लामा ने बुढ़ापे में। उसने लिखी जो कि लामा, पता है ना बुद्धिस्ट में होते हैं लामा, बहुत स्ट्रिक्ट उनका जीवन होता है, अनुशासन पूर्ण। तो उसने लिखा है कि मैं छोटा सा बच्चा था 5 साल का, और मेरे पिताजी ने मुझे रात में कहा कि बेटा कल सुबह तुम्हें गुरुकुल में छोड़ दिया जाएगा। तो रात को सुबह सुबह प्रातः काल भोर 4 बजे वो बैलगाड़ी आएगी, तुम उस पे बैठना, नौकर तुम्हें छोड़ेंगे, मैं तुम्हें छोड़ने नहीं आऊंगा, तुम्हारी माँ तुम्हें छोड़ने नहीं आएगी, और तुम पीछे भी मत देखना, क्योंकि हमारे इस कुल का ऐसा नियम है कि जो भी इस घर से बाहर जाता है वो पीछे मुड़कर नहीं देखता। अगर तू पीछे मुड़के अगर तुमने देखा तो तुम्हारे इस घर के लिए, तुम्हारे लिए रास्ता बंद हो जाएगा, दरवाजे बंद हो जाएंगे। तो लामा ने लिखा, मुझे इतना कठोर लगा वो कि ये कैसा है, कैसे मेरे पिताजी कह रहे। सुबह सुबह उठे, 4 बजे उठा सुबह सुबह, और वो बगिया, वो बैलगाड़ी आई, नौकरों ने उसको बैलगाड़ी में बिठा दिया, और उसमें शर्त थी कि आंख से एक आंसू की बूंद भी नहीं गिरनी चाहिए। 5 साल का छोटा सा बच्चा, आंख से आंसू भी नहीं आने चाहिए, और पीछे मुड़ के अपनी माँ को भी मत देखना, घर को भी मत देखना, बस नौकर तुम्हें छोड़ेंगे और चले जाना। और वैसा ही हुआ, वो बैठा, उसको आंसू आने लगे कि एक बार तो अपनी माँ को देखूं, कि कब, पता नहीं अब जाऊंगा यहाँ से तो कब, कितने साल, 10-15 साल कब वापस लौटूंगा, उसका कोई हिसाब नहीं है। तो मुझे लगा मेरे माँ बाप कितने कठोर है, ऐसा उसने आत्मकथा में लिखा उस लामा ने। और मैं बैठा और आंखों से आंसू आने ही वाले थे, परंतु मैंने अपने आप को रोक के रखा, और वो बैलगाड़ी आगे निकल गई। लगा आखिर एक बार तो पीछे मुड़कर देखूं अपने घर को, अपनी माँ को, अपने पिता को, परंतु मैंने नहीं देखा। और ऐसे करते हुए मैं उस गुरुकुल में पहुंचा, उस मोनेस्ट्री में, उस मठ में, उस आश्रम में जहां मेरी शिक्षा पूर्ण होने वाली थी। और वहां मैं पहुंचा, नौकर ने मुझे वहां छोड़ दिया और नौकर ने भी पीछे मुड़ के नहीं देखा, चुपचाप चला गया। और वह जो जिस गुरुकुल में मैं पहुंचा, वहां के आश्रम के जो मुख्य महंत थे वो आए और उन्होंने मुझसे कहा कि बेटा सुन, इस आश्रम का एक नियम है, ये जो आश्रम का गुरुकुल का दरवाजा है, फाटक है, द्वार है, यहां पे तुम खड़े रहना आंखें बंद कर जब तक मैं तुम्हें ना कहूं तब तक। अगर तुमने आंखें खोली तो तुम्हारे कुल में से आज जितने भी लोग आया है तुम्हारे खानदान से, उसमें से किसी ने भी आंख नहीं खोली थी। अगर तुमने आंख खोली तो तुम्हें यहां से वापस जाना पड़ेगा। तो वो लामा, वहां छोटा सा बच्चा, वो सोचता है कितने कठोर लोग हैं दुनिया में। तो वो बच्चा वहां खड़ा हो जाता है, सुबह सुबह 6 बजे वहां पहुंचता है। सुबह सुबह वो छोटा सा 5 साल का बच्चा खड़ा हो जाता है, मक्खियां उसको सताने लगती है। और फिर समय हो जाता है बाकी विद्यार्थियों का गुरुकुल में आने का, तो कुछ कुछ विद्यार्थी उसको चुटकी करते हैं, कोई उसको पत्थर मारते हैं, कोई उसके नाक में कान डालता है, हाथ डालता है कान में, हाथ डालता है, कोई उसके बाल खींचता है। उसको लगता है आंखें खोलू, कौन है ये जो मुझे सता रहे हैं। और मक्खियां इतनी ज्यादा है वहां पर, परंतु उसके गुरु की बात उसे याद आती है कि बेटा अगर तुमने आंख खोला तो देख लेना, तुम्हारे कुल से, तुम्हारे खानदान से जो भी आया उसने कभी आंख नहीं खोली थी। तो वो, और वो कहते हैं कि मैं आऊंगा थोड़ी देर के बाद, और मैं जब कहूंगा आंख खोलना तब खोलना। 1 घंटा बीत जाता है और वो बच्चे उसे और सजाते, कोई उसका जो बक्सा होता है वो जो बैग, स्कूल बैग, वो कोई छीन लेता है, कोई उसकी माँ ने दिए हुए उसका जो भोजन होता है कोई भोजन ही छीन लेता है, कोई उसकी चप्पल के साथ कुछ कुछ करता है, कोई उसके बाल इधर उधर करता है, बच्चे होते हैं स्कूल के, उसको छेड़छाड़ करते हैं उसके साथ, परंतु वो तटस्थ खड़ा रहता है, तितिक्षा, आंख नहीं खोलता है, क्योंकि गुरु ने कहा था आंख नहीं खोलना। 1 घंटा 2 घंटा 3 घंटा, फिर दोपहर होने लगती है, सूरज सिर पे आ जाता है, कड़ी धूप, पसीना आने लगता है, परंतु आंख नहीं खोलता है, आंख बंद ही रखता है। दोपहर हो जाती है, शाम होने लगती है, भूख लगती है क्योंकि सुबह से कुछ खाया नहीं है उसने, परंतु किसको बोले, आंख कब खोले, आंख बंद। शाम हो जाती है और शाम को गुरु आते हैं कि बच्चे अब आंख खोलो, तुम उत्तीर्ण हुए, अब तुम इस गुरुकुल में आ सकते हो। उस लामा ने अपनी आत्मकथा में लिखा कि मुझे लगा कि मेरे माँ बाप और ये जो गुरु है कितने कठोर थे, पर आज मुझे लगता है कि उनका ही ये प्रेम था, ये कठोरता नहीं थी। अगर जीवन का वो पाठ उन्होंने मुझे नहीं पढ़ाया होता तो शायद मैं इतना जीवन में जो परीक्षाएं आने वाली थी वो मैं पास नहीं कर पाता। बाबा क्या कह रहे, परीक्षाओं में तटस्थ, परीक्षाओं में छोटी बड़ी बात को छोटा कर दो, जैसे कुछ है ही नहीं, पर उसके लिए ट्रेनिंग भी चाहिए इस तरह की। तो ऐसी कई सारे लोगों की जीवन कहानी है। ये आज हमको पढ़ने के लिए टाइम नहीं मिला क्योंकि हम रात में काफी लेट आए 12 बजे। तो एक जो शायद हम पहली बार ही इस किताब को आज ला रहे हैं यहाँ पर, ये किताब हमने लिखी थी जब हम 21 साल के थे, 22 साल के। तो ये जब MBBS पूरा हो गया था और इंटर्नशिप जो होती है वो भी पूरी हो गई थी, और उसके बाद हम जब नागपुर में थे तब हमने अपनी जीवन कहानी लिखी थी। ये शायद किसी को ही नहीं बताई और ये हाथ से ही लिखी हुई है, अभी तक ऐसी ही रखी हुई है। तो इसमें बहुत सारी बातें हमने ऐसी लिखी थी ताकि हमको लगा था अभी हमारा जीवन बस थोड़ा सा रह गया है और इसको कुछ तो करना चाहिए जाने से पहले, तो ये लिख के जाते। और अचानक एक ऐसा मौन आ गया था 15 दिन के लिए, इतना गहन मौन। नागपुर में हम थे तब हमारे भाई के पास कमरे में, हॉस्टल में, कि इतना मौन कि हमको बचपन से लेकर उस समय तक, हम ज्ञान में नहीं थे इस समय, ज्ञान में जस्ट थोड़े से दिनों पहले तक, मतलब ये जो लिखा गया है ये लिखा है 15 अगस्त से 26 अगस्त 2002 या 2003 में। तो उसमें आज हमको ये किताब याद आई, इसके लिए आज लेके आए। इसमें कुछ बहुत मजेदार बातें हैं, कुछ कुछ इंग्लिश में लिखा था उस समय तो जैसे इसमें कुछ कुछ बातें ऐसी लिखी है कि बचपन से चालू किया, कि बचपन से लेकर तो उस समय तक जो कुछ किया है उसकी शायद ही कोई ऐसी बात है जिसमें छूटी है, ये इतना बड़ा है। तो मतलब जैसे जन्म से लिखा है कि कैसे जन्म हुआ था, और इसमें एक चीज और लिखी है कि जहां हमारा जन्म हुआ था महाराष्ट्र में विदर्भ में दरियापुर नाम का एक छोटा सा गांव है वहां पर, तो वहां पर बहुत समय से बारिश नहीं हुई थी, ठीक है। तो एक दिन फिर जैसे हमारा जन्म हुआ, जैसे महान आत्माओं का होता है ना, तो हमारी माता जी हमको बताती है कि तुम्हारा जब जन्म हुआ ना, तो हर माँ को ये बहुत खुशी होती है कि उस दिन फिर बहुत अचानक से बारिश हुई, बहुत समय के बाद अकाल पड़ा हुआ था। तो वो हमारी माता जी हमेशा हमको बताती थी कि ऑस्पिशियस बर्थ है ये, कि लोगों बहुत लंबा समय से बारिश के लिए वेट कर रहे थे, तो जैसे जन्म हुआ वैसे बारिश हुई, ठीक है। तो इस बात का हमको बहुत समय तक बहुत नशा था, पर एक दिन ऐसा हुआ कि उस गांव से एक व्यक्ति आया हमारे घर जब हम थोड़े छोटे थे, तो उसने बताया, हम तो माता जी उसको शायद ये बता रही थी, तो उसने बताया ऐसा नहीं है, उसके पहले रात में भी बारिश हो गई थी। तो सारा हमारा जो नशा था वो सब किरकिरा हो गया। यहाँ पे हमने एक जगह लिखा है कि एक बार हमारी माँ ने हमको कहा था कि ये स्लेट लो और लिखो उस पे ए बी सी डी, तो हमने लिखा ए बी, और वो इतना बड़ा बड़ा लिख दिया ए और बी, तो फिर उसने कहा कि सी कहाँ है, तो मैंने कहा कि सी लिहायला जागास नहीं, मतलब सी लिखने को जगह ही नहीं है, मैं कहाँ लिखू अब। तो ये ऐसी कुछ कुछ बातें, एक बार हमको याद है हमारी जो स्कूल थी वहां हम गए, वहां पर एक पहाड़ी थी, और वो पहाड़ी पर हम लोग कुछ मित्र लोग गए, और वो मित्र लोग गए और वो पहाड़ी पर चढ़ के हमने देखा कि धरती कैसी, पहली बार हमने देखा कि धरती गोल है, मतलब हमको लगा इतना ऊपर हम चले गए कि धरती वहां से हमको दिखी कि गोल है, ये चीज एक अनुभव उसमें लिखा। दूसरा एक चीज लिखा है, ये चार पांच छह सात छह साल ऐसा कुछ होगा, फिर हमने लिखा कि दो पुअर इन स्टडीज आई वॉज वेरी सिंसियर एंड वुड नेवर मिस द स्कूल एंड आई हेटेड टू बंक इट फॉर ट्रिपल रीजंस, सिंसियरिटी क्वाइट रिगार्डलेस ऑफ माय ओन विश ऑलवेज अकंपनीड मी एट ऑल स्टेशंस ऑफ माय लाइफ एंड आई शैल नॉट बी रॉन्ग इफ आई से दैट आई वॉज बॉर्न विथ इनेट सिंसियरिटी इन माय हार्ट, nor do I recall having uttered a single lie any time. Truth like sincerity was ever with me in spite of my knowledge of it. ये कुछ बातें इसमें लिखी है। फिर उसके बाद में और एक दो तीन अच्छी बातें यहाँ पर। हाँ, एक बार हमने देखा रात में स्वप्न में कि हमको साइकिल चलाना नहीं आती थी, तो स्वप्न में हमने देखा कि हम साइकिल चला रहे हैं। फिर दूसरे दिन हम साइकिल चलाने गए, परंतु साइकिल चलानी हमको आई नहीं और कई सालों तक चलाते नहीं आई। फिर इसमें एक जगह लिखा, एक बार रात में स्वप्न में एक गीत सुना, जग में सुंदर है दो नाम, चाहे कृष्ण कहो या राम। तो ये गीत हमको जैसे उस स्वप्न में ही सुनाई दिया, पहली बार ये कभी सुना नहीं था, उस स्वप्न से इस गीत की शुरुआत हुई। उसमें और एक चीज लिखी है, हाँ, फिर हम जब स्कूल में गए तो एक कविता बहुत अच्छी लगती थी, मैं गोताखोर मुझे गहरे जाना होगा, तुम तट पर बैठ भंवर की बातें किया करो। और वहां पर फिर हमारे स्कूल में पीटी होती थी, पीटी फिजिकल ट्रेनिंग, और उसमें मुझे ये कभी भी समझ में नहीं आया दैने कौन सा है और बाये कौन सा है। उसमें हमने लिखा, पीटी टीचर टॉट ही बीइंग वेरी स्ट्रिक्ट टू द एक्सट्रीम, विच इज दैने एंड विच इज बाय एवर रिमेंड अ कंफ्यूजन इन माई हार्ट। कभी भी दैने बोलते थे तो अचानक मैं बाय मुड़ जाता था, और जब बाय बोलते थे तो दैने मुड़ जाता था। और हमारे पिताजी हमें रोज सुबह सुबह एक सेमिनरी हिल्स थी नागपुर में, वहां लेके जाते थे, तो वो जब उठते थे तो इच्छा नहीं होती थी उठने की, परंतु जब एक बार चले गए उस प्रकृति के सानिध्य में और वो उस वातावरण में, तो फिर वहां बहुत अच्छे लगने लगता था। ये फिर मुझे याद है एक बार हम बीमार पड़ गए थे, और यहाँ का एक संस्मरण लिखा है कि हमें अपेंडिक्स हो गया, हॉस्पिटल में एडमिट कर दिया, और हमारे ही बेड के बाजू में एक दूसरा बच्चा था, उसको भी अपेंडिक्स था, परंतु वो सरकारी अस्पताल था, बहुत भीड़ थी वहां पर, और हमारे पिताजी ने और माताजी ने शायद जो डॉक्टर थे उनको अलग से पैसे दिए थे, और फिर हमारा ऑपरेशन जल्दी हो गया था। और जो दूसरा वाला था, सरकारी अस्पताल में तो सबके हो जाने चाहिए, परंतु उसको थोड़े अलग से पैसे दिए थे तो हमारा जल्दी हो गया, और जो बाजू वाला था उसका दो तीन दिन तक नहीं हुआ था। तो हमने देखा था कि व्हेन आस्क्ड अबाउट माय पेरेंट्स अबाउट दैट आई वाज टोल्ड आई वाज ऑपरेटेड अर्ली बिकॉज वी गेव रूपीज 3000 फॉर गेटिंग ऑपरेटेड अर्ली। आई वॉज डिस्गस्टेड, सच आइडिया वॉज इनटॉलरेबल टू माई इनोसेंट माइंड, बट वॉट कुड आई डू। मुझे एकदम घृणा आई ये बात सुनकर। तब शायद हम सेवेंथ में थे, और फिर हमने डिस्चार्ज में एक संकल्प किया कि आज से मैं ये संकल्प करता हूं कि आज से इस संसार के किसी भी हॉस्पिटल में कभी कदम ही नहीं रखूंगा चाहे कुछ भी हो जाए, हॉस्पिटल में पैर नहीं रखूंगा आज से चाहे कुछ भी हो जाए किसी भी कारण से। अपेंडिक्स तो निकल गया, उस टाइम में ऑपरेशन हो गया ना, परंतु ऑन डिस्चार्ज आई क्लियरली रिकलेक्ट दैट आई हैव रिजॉल्व्ड नेवर अगेन टू विजिट द हॉस्पिटल एनी टाइम इन माई लाइफ, बट मैन प्रपोजेस एंड गॉड डिस्पोजेस। माई इग्नोरेंट माइंड हैड नो विजन ऑफ फ्यूचर, मेरे अज्ञात मन को भविष्य का कोई एक वो ये नहीं था, पता नहीं था क्या होने वाला था। अभी एंड ऑफ स्कूल लाइफ, फिर ये आठवीं स्टैंडर्ड में एनसीसी में 8th महाराष्ट्र बटालियन, फिर इंग्लिश ग्रामर। इंग्लिश ग्रामर मेरा बहुत पुअर था, मुझे पता नहीं रहता था क्या करना है और क्या नहीं करना है उसमें। फिर उसके बाद में कुछ दो तीन बातें और है, द कॉलेज, फिर कॉलेज लाइफ में कॉलेज की बातें लिखी है, फिर साइक्लोनिक टर्निंग पॉइंट, अचानक से वो किताब हमारे हाथ में आई, मजची मीत व्यालो आपुली अपोटी आलो, मतलब मेरे ही गर्भ से मैंने जन्म लिया ऐसी इसमें एक वर्णन लिखा है किताब के बारे में। और वो सेंट फ्रांसिस डी अमंगस्ट अदर बुक, अ टैटर्ड बुक बाय सेंट फ्रांसिस डी सेड आई लाइक द मोस्ट। अब वो जो सेंट फ्रांसिस डी की छोटी सी एक किताब हमने पढ़ी लव ऑफ गॉड, उसमें कुछ कुछ ऐसी बातें लिखी थी, गिव योर हार्ट टू गॉड 1000 टाइम्स अ डे, दिन में 1000 बार अपना हृदय भगवान को दो, द मोर परफेक्ट अवर पेशेंस इज द मोर परफेक्टली डू वी पजेस अवरसेल्फ्स। तो फिर उसके बाद में डीप कंटेम्पलेशन, ऐसे अलग अलग उनके नाम भी दिए थे, पता नहीं है हमने कैसे किया, अभी पढ़ता हूं तो एकदम आश्चर्य होता है लिखा कैसे। फिर उसके बाद में मेडिकल कॉलेज में एडमिशन जो हुई उसके बारे में, फिर एमबीबीएस का फर्स्ट एमबीबीएस, उसके बाद में रैगिंग, एमबीबीएस में भयंकर रैगिंग होती थी, उस रैगिंग का वर्णन, और कैसे हम हमेशा छूट गए और कैसे वो गायत्री मंत्र ने हमको एकदम छुड़ाया एक बार फंस भी गए थे क्योंकि हमारे कॉलेज में भयंकर रैगिंग होती थी बहुत ज्यादा। हाँ, पूरी 50 की बैच में से हम ही एक थे जो छूट गए। एक रैगिंग पर कविता लिखी थी, ये पहली कविता है शायद जो लिखी थी। तो एक सीनियर हमारे कमरे में आया था, मतलब एक दो लोग ऐसे रैगिंग में जहां जहां लोग रहते थे उनके कमरे में वो सीनियर जाते थे, और उसने चुपके से ये कविता लेके गई और कॉलेज की मैगजीन में चुपके से पब्लिश कर दी थी। पब्लिश होने के बाद हमको पता चली थी ये, मतलब उसने पब्लिश करा दी करके। मेडिकल स्टडीज के बारे में लिखा था, फिर घर में छुट्टियां होती तो घर में आते थे उसके बारे में लिखा था, फिर कविता लिखनी चालू की, कैसे चालू की उसके बारे में लिखने के लिए, तो बुक्स 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 आई वॉज ऑब्सेस्ड विद देम। मैं हर छोटी छोटी हर किताब हर दुकान में जाता था जहां पुरानी किताबें बेची जाती थी, और मेरे पास पैसे नहीं रहते थे तो मैं लेता था, थोड़ा सा पढ़ता था और दे देता था वापस जो काम का है फिर एक बार हमारी सिस्टर ने चैलेंज किया था कि तुम कविता लिखोगे, तो तब से हमने फिर एक कविता लिखी और वहां से जैसे एक कविता लिखनी वहां चालू की थी। उसके बाद में द फर्स्ट एनकाउंटर विद गर्ल्स, स्कूल में जो लड़कियां थी सबसे पहले उनसे डर लगता था तो वो पहला एनकाउंटर उनके साथ। फिर उसके बाद में वहां पे एक महादेव मंदिर था, शिव ज्ञान मंदिर, ये मंदिर हमको बहुत पागल कर देता था क्योंकि वो जो जैसे गीत बजता था हर हर भोले नमः शिवाय, तो वो पढ़ाई छोड़ी और चलो मंदिर सेकेंड एमबीबीएस में कॉलेज लाइफ, फिर उसके बाद में लर्निंग टू स्पीक, फिर ये टीजिंग, फिर उसके बाद में गणेश फेस्टिवल कॉलेज का, उसका पूरा वर्णन और फिर उसमें क्या क्या हुआ। फिर ये योगानंद स्वामी की एक किताब हमने पढ़ी थी, ऑटोबायोग्राफी ऑफ योगी, चार बार पढ़ी सेकंड बीबीएस में। फिर न्यू ईयर में क्या क्या किया, 1998 या 99 था शायद ये, फिर सेकंड बीबीएस, फिर उसके बाद में वैकेशंस एंड शॉक, ये सारा बहुत सारी चीजें है उसमें, ये सारा हम छोड़ रहे हैं। एक महत्वपूर्ण जो बात है वहां जो हमको बतानी है, कृष्ण ज्ञान मंदिर, वहां जो पीछे हमारे हॉस्टल के पीछे था, फिर लाइब्रेरी, लाइब्रेरी खुलती थी 10 बजे, हम लोग जाते थे सुबह 6 बजे, लाइब्रेरी के बाहर पढ़ाई करते थे बैठकर, क्योंकि लाइब्रेरी का हमको एडिक्शन था, जैसे लाइब्रेरी में ही पढ़ना है, लाइब्रेरी किसी और कहीं पढ़ाई नहीं होती थी। तो लाइब्रेरी में जाओ, 10 बजे खुलती थी, उसके पहले वो बरामदा, वहां बैठो, यहां बैठो, वहां पढ़ाई करो। फिर री अवेकनिंग, एमबीबीएस पूरा हुआ और पुनर्जागरण हुआ, वो एक अलका श्री जी आए थे उनके द्वारा। फिर इंटर्नशिप चालू हुई, फिर वहां करप्शन देखा, फिर फर्स्ट एनकाउंटर विद डेथ, ये एक बहुत सुंदर, सबसे पहला 23 जनवरी 2000, हम पहला फर्स्ट एमबीबीएस पूरा हो गया था और इंटर्नशिप चालू हो गई थी। एक बहुत सीरियस पेशेंट आया और उसको यवतमाल से नागपुर पहुंचाना था, और हमने कभी कोई पेशेंट को पहुंचाया नहीं था, कभी कोई इंजेक्शन कुछ नहीं दिया था, कुछ पेशेंट्स का कोई अनुभव नहीं था, क्योंकि खाली एमबीबीएस पूरा हुआ था, थियरी पता थी, पेशेंट से तो अभी अभी सारा संपर्क चालू हुआ था। तो एक पेशेंट को नागपुर पहुंचाना था एम्बुलेंस में, तो उसका ये पूरा हमने वर्णन किया है कि कैसे वो रात के 10 बजे वो पेशेंट आया, खून निकल रहा है, उसको मशीन पे डाला हुआ है, सीटी स्कैन मशीन नहीं थी, हमने कभी सीटी स्कैन क्या होता है देखा ही नहीं था, तो एम्बुलेंस में हम बैठे और हमने कहा हम लेके जाएंगे इसको चैलेंज, तो हमको दे दिया और सब बताया, बहुत सारे इंजेक्शन दे दिए, ये हुआ तो वो देना, अब इंजेक्शन कैसे देना वो पता नहीं, और वो एम्बुलेंस में बैठ के हम निकल पड़े वो पेशेंट के साथ, और वो पेशेंट और पूरा लिख रहे हैं उसका पल्स कितना है, ये कितना है, और मन में हनुमान चालीसा, जय हनुमान ज्ञान गुण सागर, जय कपी सती लोक उजागर, और वो पेशेंट को लेके जा रहे हैं, बीच में ऑक्सीजन सिलेंडर फेल हुआ, एक हॉस्पिटल में गए सावंग वर्धा में, और एक हॉस्पिटल में गए सावंगी में, सावंगी उन्होंने कहा यहां नहीं मिलेगा सरकारी में जाओ, सरकारी में गए वो हॉस्पिटल सिलेंडर में, वो हॉस्पिटल चेंज किया, पूरा खून ही खून पूरे कपड़ों पे, और फिर उसको लेके गए, हमने कहा कि ये बचेगा, इसको जब तक हम नागपुर नहीं लेके जाएंगे ये जाएगा नहीं, क्योंकि डिटेरेट होता रहा था, उसकी पल्स कम हो रही थी, कुछ दिख नहीं रहा था। और फिर उसके बाद में एक चीज और एक लिखी है हमने यहाँ पर कि हमको थोड़ा वॉशरूम जाना था, पर हमने सोचा नहीं जाएंगे जब तक इसको नहीं पहुंचाएंगे क्योंकि अगर हम सिलेंडर को एम्बुलेंस को रोकते हैं तो सीरियस है, इमरजेंसी है। और फिर एक बात और लिखी, उस ड्राइवर की हमने बहुत तारीफ की, और तब से ड्राइवर्स के प्रति हमारे मन में बहुत सम्मान है कि वो ड्राइवर्स को हर रास्ता पता था, हमको लगा कैसे, कितना आश्चर्य है, क्योंकि हम कभी गए नहीं घर से बाहर ज्यादा, ये ड्राइवर के प्रति इतना सम्मान कि इसको जहां बोलो वो बराबर घुसाता था और गलियों से निकालता था। तो वो सारी चीजें हमने इसमें लिखी है। तो ड्राइवर वॉज नोइंग ऑल द वेज, आई एडमायर्ड हिम इंटरनली फॉर हिज क्लेवरनेस। तो फिर हम पहुंचते गए सुबह 6 बजे, 7 बजे क्या हुआ, फिर हम पहुंचे नागपुर, सून वी रीच इन द हार्ट ऑफ द सिटी, डॉक्टर दर्डा नियर लोकमत बिल्डिंग रामदास पेट। और फिर आई वॉज अशेम्ड ऑफ माई इग्नोरेंस ऑफ कॉमन रोड्स एंड प्लेसेस, मुझे शर्म आई कि मुझे कोई भी रास्ता पता नहीं ये चीज इसमें लिखी। फिर वो हॉस्पिटल टेबल पर वो पेशेंट को लिया गया, और वहां पर ही सबसे पहली बार हमने देखा हार्ट में कैसा इंजेक्शन दिया जाता है, अब तो वो आउटडेटेड हो गया, इंट्राकार्डियक इंजेक्शन वहां दिया गया, और वो पेशेंट की ऑन टेबल डेथ हुई। और फिर वो डॉक्टर ने मुझे दिखाया सीटी स्कैन, पहली बार देखा ये होता है सीटी स्कैन, सीटी स्कैन देखा ही नहीं था क्या होता है, और वो सीटी स्कैन में दिखाया बहुत बड़ा ब्लीड है उसको, आधा भाग ब्रेन का। और फिर रात में, और फिर हम उस डेड बॉडी को डालकर, क्योंकि बहुत वीआईपी पेशेंट था, उसी एम्बुलेंस में डेड बॉडी को डाल के हम लेके आए, तो उस समय फिर मैं आगे बैठा था, और फिर वहां पर एक गीत बजा, जाते समय कैसी अवस्था थी हमारी कि बिल्कुल अब ये जाए न जाए, और आते समय शांति से बैठे थे, गीत बज रहा था राजी तेरी रसा में, मुझे एतराज क्या है, हाउ फीबल मैन इज स्टिल ही फॉरगेट्स दिस एंड थिंक ऑफ हिमसेल्फ एज सुप्रीम रूलर हु कंट्रोल्स ऑल थिंग्स, कंप्लीटली इग्नोरेंट ऑफ दैट सुप्रीम लॉर्ड हु इज अबो ऑल, एंड व्हाट अ वे डेथ हैज कम, हाउ हॉरिबल, ओ लॉर्ड गिव रेस्ट टू दिस सोल, गिव स्ट्रेंथ टू द रिलेटिव्स ऑफ दैट पेशेंट एंड लेट मी नॉट फॉरगेट इवन फॉर अ सेकेंड दैट माई लाइफ इज नॉट फॉर माई सेल्फ बट फॉर अदर्स। तो ये एक वर्णन किया। फिर अलग अलग पोस्टिंग है, ईएनटी में गए तो क्या किया, ऑप्थल में गए तो क्या किया, फिर सर्जरी में गए तो क्या किया, सर्जरी में देखा हमने सरकारी अस्पताल में पेशेंट को भूखा रखते हैं ऑपरेशन के लिए, ठीक है, सुबह से भूखा रहता है पेशेंट, रहता है 1 बजे तक 12 बजे तक 12 बज जाते हैं, फिर डॉक्टर बोलते आज नहीं कल करेंगे, आज हम थक गए, और वो छोटा सा बच्चा उसको घर हॉस्पिटल में वार्ड में वापस भेज देते हैं। सरकारी अस्पताल में सब होता है 1-1 बजे तक भूखा रखते हैं पेशेंट को, और फिर ऐसे सिली रीजंस कि आज तो बस आज तो कुछ करने की इच्छा नहीं हो रही है, ऐसे ऐसे सब सरकारी अस्पताल की सारी बातें हैं यहाँ पे। तो हमने यहाँ पे देखा था कि ये अगर मैं सर्जन बना तो ऐसा कभी नहीं होने दूंगा नहीं बने। फिर पीडियाट्रिक पोस्टिंग, छोटे छोटे बच्चे हमारे पास ऐसी एक डॉक्टर थी, हमको छोड़ देती थी हमारे भरोसे, हमको कुछ पता नहीं अब हॉस्पिटल में छोटे बच्चों को क्या इंजेक्शन देना है। एक 6 महीने का बच्चा, 2 दिन का बच्चा, अब 2 दिन के बच्चे को कितना इंजेक्शन, कितना डोज, हमको क्या पता। हमारी सीनियर हमारे भरोसे छोड़ के चली जाती थी और कहती थी अगर वो मर गया तो ये कॉज ऑफ डेथ दे देना। कॉज ऑफ डेथ लिख के जाती थी, डेथ सर्टिफिकेट भर के जाती थी, और अगर वो नहीं मरा तो सुबह आके फाड़ देती थी, ऐसी भयंकर थी। तो हम जब रात में सोते थे वो बाजू के कमरे में पीडियाट्रिक, वो 50 पेशेंट सरकारी अस्पताल, तो धक धक होता था जैसे ठक ठक होती थी। अब देना क्या है, एक एक दिन का बच्चा, तो सिस्टर बोलती थी कितना दू, हम कहते थे आधा से आधा दे दो। ये इंजेक्शन का कितना, एमिकेसिन कितना देना है, तो वो कहती थी कितना दू, 500, हम कहते थे 500 नहीं 100 दे दो, आधा दे दो आधा दे दो। क्योंकि डोज किसको पता है, देना कितना है वो हमको पता थोड़ी ना है कितना देना है। फिर एक थैलेसीमिया की एक पेशेंट थी, एक छोटी सी गौसिया, उसके ऊपर लिखा हुआ है स्किन पोस्टिंग कैजुअल्टी, और यहाँ पे रेडियोलॉजी। फिर ये पूरा हुआ और फिर वहां से ये इंटर्नशिप का लिखा हुआ है, बहुत सारी बातें। जहां हम एक छोटे से गांव में गए इंटर्न करने, वहां करप्शन, भयंकर करप्शन। वो जो हमारे बॉस थे वो सरकारी अस्पताल में रहते हुए बाहर के पेशेंट भी देखते थे और उनसे ज्यादा पैसे लेते थे, वो सारी इसका भी वर्णन इसमें किया है। फिर एक बार फिर ये सब चालू था, फिर भागवत कथा सुनी, वो भागवत कथा सुनते सुनते क्या क्या हो गया उसकी भयंकर वर्णन है इसमें। फिर पीजी एंट्रेंस एग्जाम दी, फिर एक व्यास, फिर और एक ज्ञानेश्वरी, फिर से एक भागवत, फिर एक हरे कृष्णा का भागवत, फिर इंटर्नशिप यहाँ पूरी हुई, और उसके बाद में फिर पीजी का प्रिपरेशन, फिर ये सारा ज्ञान का अध्ययन, विवेकानंद और बाकी सब, फिर एस्कॉन, फिर एक झटका जबरदस्त। इसका वर्णन है कि पहली बार ब्रह्मा कुमारी का संपर्क, मतलब पहली बार अर्थात आर्गुमेंट हो गया कि सबसे पहले ये क्या है, जबरदस्त, ये कैसी फिलॉसफी है। व्हेन आई हर्ड ऑफ इट्स पेक्यूलियर फिलॉसफी थियरी एंड रिचुअल्स आई वॉज टेकन अबैक, एकदम शॉक लगा। दे हेल्ड दैट, वो ब्रह्मा कुमारी वाले कहते हैं कि गॉड इज नॉट ओमनी प्रेजेंट, कि वो सर्वव्यापी नहीं है। मुझे लगा ये तो कलंक है, ये जैसे वो लोग कहते हैं, ब्रह्मा कुमारी कहते हैं वो भगवान पर कलंक है, ही इज पॉइंट ऑफ लाइट, ही इज सुप्रीम अबोड, ही इज नोन बाय द नेम शिव बाबा एंड वी आर हिज चिल्ड्रेन। तो ये सारा लिखा, और ये सब, और राधा कृष्ण, तो यहाँ पे मैंने लिखा इसमें, एंड मेनी अदर थिंग्स, द होल कॉन्सेप्ट शुक मी। ये जो सारा कॉन्सेप्ट था इसने मुझे एकदम जबरदस्त धक्का दिया। द एंटायर कॉन्सेप्ट ऑफ गॉड अपीयर्ड, आई वॉज कंफ्यूज, अब मुझे कौन समझाए क्या है ये। द वेरी बेसिक फिलोसॉफी ऑफ कल्टीवेशन ऑफ मॉरलिटी एंड चेस्टिटी, वो तो ठीक है, पर फिर मुझे धीरे धीरे पता चला कि ये भी एक मार्ग है, जैसे भगवान को पाने के हजारों मार्ग है, ये भी एक मार्ग है। सो फिर मुझे लगा लेट एवरी वन वर्शिप हिज मैजेस्टी, फिर से पढ़ाई और फिर इसमें सारा वर्णन है, फिर से भागवत कथा कहीं और फिर भगवान की तरफ से एक आवाज कॉल है। फिर उसके बाद में यहाँ पे मैंने इसको एंड किया है, परंतु बाद में फिर थोड़ा सा और लिखा कि एक स्ट्रगल हुआ, अब करना क्या है, इधर या उधर, इधर या उधर, इधर या उधर, उधर या इधर, और दो विजन्स, हॉस्पिटल आश्रम, पेशेंट्स भगवान, कर्मयोग या संन्यास, ड्रग्स या भजन, वर्ल्डली कंपनी या सत्संग, मेडिकल की किताबें या शास्त्र, बीमारियां या धर्म, डिजायर टू सर्व, पेशेंट की सेवा करे या कैवल्य पद की प्राप्ति करे, पेरेंट्स को सुखी करे या विश्व को सुखी करे, स्टेथोस्कोप या जप की माला, एप्रन या सन्यासी के वस्त्र, डॉक्टर या सन्यास। ये पूरा इसने कॉलम बनाया है। फिर यहाँ पर ब्रह्मा कुमारी इसका और एक चैप्टर लिखा है, यहाँ पर बहुत जबरदस्त स्ट्रगल हुआ कि उसका क्या करे अभी, वो बाकी लोग भी है, गुलाब महाराज, माता अमृतानंद मई, अवधेशानंद गिरी, इनका क्या करे, और ये ब्रह्मा कुमारी। और यहाँ पर फिर फाइनल डिसीजन, द लास्ट डिसीजन, 6th मार्च 2003, ये फाइनल डिसीजन है। यहाँ है 2003 नवंबर में, ये है मार्च का, तो यहाँ तक ये पूरा लिखा हुआ है। ये ऐसा एक वर्णन है किताब में, बहुत समय के बाद हमने भी इसको आज ही खोला, तब से शायद आज ही खोला है, 7-8 साल के बाद। तो ये शॉर्ट में जीवन कहानी तब लिखी थी, हमको लगा था जैसे संत ज्ञानेश्वर अभी भी शरीर चले गए छोड़ के, और जा सब लोग जल्दी, हमारा भी टाइम आ गया है। तो मुझे फटाफट लिखना है, और ये लिख के पूरा कर दिया था। फिर सोचा इसको पब्लिश करे, फिर सोचा ये पब्लिश करना भी, ये तो दिखावा हो गया, तो फिर उसको वापस बंद कर दिया। वापिस रख दिया और तब से आज तक रखा हुआ है ये, और इसको कहीं परिवर्तन नहीं किया है।
ओम शांति।